एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की पड़ताल करेंगे जो बहादुरी, प्यार और मतलब कमाल की दिमागी पच की एक मिसाल है। एक ऐसी कहानी जो यकीन दिलाती है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ सकता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं इलियन वू की किताब मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ की।
जी।
ये कहानी है एलन और विलियम क्राफ्ट की, एक ऐसा जोड़ा जो 1848 में अमेरिका की गुलामी से भागा था। और उनका तरीका अरे होश उड़ा देने वाला।
हाँ, ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं है बल्कि ये तो अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपनी इंसानियत को वापस पाने का एक असाधारण सफर है।
बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये कहानी आज भी उतनी ही मायने रखती है।
सही। ये पहचान, आज़ादी, समाज के जो बंधन होते हैं और नाइंसाफी के खिलाफ अनोखे तरीकों से लड़ने की बात करती है। ऐसे मुद्दे जो आज भी हमारे समाज में गूंजते रहते हैं।
सही कहा।
ये दिखाती है कि कैसे प्यार और सरलता सबसे मुश्किल हालातों में भी प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकते हैं।
तो चलिए इस हैरतअंगेज यात्रा को और गहराई से समझते हैं।
हाँ, शुरू करते हैं लेखिका से, इलियन वू। वो एक जानी मानी अमेरिकन लेखिका और स्कॉलर हैं, और उनकी खासियत है अमेरिकी इतिहास की उन कहानियों को सामने लाना जिन्हें या तो भुला दिया गया है या मतलब कम बताया गया है।
अच्छा।
उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में पीएचडी की है, तो ये तो तय है कि उनकी रिसर्च बहुत गहरी होती है।
हाँ, उनकी पिछली किताब द ग्रेट डिवोर्स वो भी काफी चर्चा में रही थी।
वो की खास बात ये है, जैसा आपने कहा, कि वो सिर्फ तथ्य नहीं बताती, वो अकादमिक रिसर्च को एक रोमांचक कहानी की तरह बुनती हैं। हमें उस समय के माहौल से, लोगों के डर से, उनकी उम्मीदों से जोड़ देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम वही हैं।
एकदम सही। इस किताब के लिए उन्होंने क्राफ्ट्स की अपनी लिखी कहानी है ना, रनिंग 1000 माइल्स फॉर फ्रीडम।
हाँ हाँ
वो फिर उस समय के गुलामी विरोधी अखबार, निजी खत, सरकारी दस्तावेज, मतलब असली स्रोतों पर सालों तक काम किया।
वाओ।
तो वो सिर्फ एक इतिहासकार नहीं बल्कि एक शानदार कहानीकार भी हैं। वो हमें क्राफ्ट्स के डर, उनके इरादों, उनकी अंदरूनी कश्मकश को हमदर्दी से समझने में मदद करती हैं।
इतिहास और कहानी का एक बेहतरीन संगम लगता है ये।
बिल्कुल।
तो किताब की कहानी असल में है क्या? ये एलन और विलियम क्राफ्ट की सच्ची कहानी है जो दिसंबर 1848 में जॉर्जिया की गुलामी से भाग निकले। उनकी योजना दिखने में सीधी पर असल में उतनी ही खतरनाक और दुस्साहसी थी।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये गुलामी की पूरी व्यवस्था के लॉजिक पर ही सवाल उठाना था।
अच्छा, कैसे?
देखिए, एलन, जिनकी त्वचा का रंग अपने श्वेत पिता की वजह से काफी गोरा था, उन्होंने एक अमीर बीमार श्वेत आदमी मिस्टर विलियम जॉनसन का भेष बनाया,
और उनके पति विलियम ने उनके वफादार गुलाम सेवक की भूमिका निभाई।
सोचिए, ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये तो अपनी नस्ल, अपना जेंडर, अपना सामाजिक दर्जा, सब कुछ बदलना था, वो भी पल पल के खतरे के बीच।
कल्पना कीजिए, ट्रेन और स्टीम बोट से गुलामों वाले दक्षिणी राज्यों के बीचों बीच 1000 मील का सफर।
बाप रे।
ये 4 दिनों का एक ऐसा नाटक था जहां एक छोटी सी चूक, एक जरा सी गलती का मतलब था पकड़े जाना, भयानक सजा और शायद हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाना।
हर पल खतरा सर पे मंडरा रहा होगा।
किताब हमें इसी रोमांचक सफर पर ले जाती है। ये एक थ्रिलर जैसी भी है, एक गहरी प्रेम कहानी भी और समाज का एक पैना विश्लेषण भी। ये दिखाती है कि कैसे प्यार, दिमागी सूझबूझ और अभिनय कैसे इन्हें जुल्म की एक मजबूत लगने वाली व्यवस्था के खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है। जैसा आपने कहा, ये महज भागने की कहानी नहीं बल्कि अपनी शादी, अपनी पहचान और अपनी इंसानियत को दोबारा हासिल करने की एक बहुस्तरीय लड़ाई थी।
हाँ, और ये समझने की कहानी है कि नस्ल, लिंग, वर्ग जैसी पहचानें कितनी मतलब कितनी बनावटी हो सकती हैं।
चलिए कहानी के अलग अलग पड़ावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किताब की शुरुआत होती है मेकॉन, जॉर्जिया में, 1840 का दशक। विलियम एक हुनरमंद बढ़ई थे और एलन एक दर्जी और घरेलू सेविका। उन्हें अपने मालिकों की वजह से कुछ हद तक छूट मिली हुई थी, लेकिन गुलामी की भयानक सच्चाई से तो वो बच नहीं सकते थे।
खासकर एलिन की कहानी दिल को छू जाती है। वो अपने पहले मालिक और एक गुलाम माँ की बेटी थी।
अच्छा।
उनकी गोरी त्वचा उनके जन्म से जुड़ी हिंसा की लगातार याद दिलाती थी और उनकी मालकिन उनसे जलती भी थी। ये उनकी पहचान का एक बहुत उलझा हुआ हिस्सा था, जिसे बाद में उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने भागने के लिए इस्तेमाल किया।
और यहाँ कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू आता है, विलियम और एलिन का रिश्ता।
हाँ।
उनका प्यार बहुत गहरा था, लेकिन कानून की नज़र में उनकी शादी का कोई मतलब नहीं था, और हमेशा ये डर कि मालिक उन्हें कभी भी बेचकर अलग कर देंगे।
सोचिए जरा,
यही डर कि उन्हें या उनके होने वाले बच्चों को अलग किया जा सकता है, उनके भागने का सबसे बड़ा कारण बना। यह सिर्फ आज़ादी की तलाश नहीं थी, ये अपने प्यार, अपने परिवार को बचाने की एक बेताब कोशिश थी।
बिल्कुल, और इसी डर और प्यार ने उन्हें उस अविश्वसनीय योजना तक पहुंचाया। किताब का दूसरा हिस्सा इसी योजना के बारीक ताने बाने को खोलता है।
हाँ, वो भेस बदलने वाली बात।
हाँ, पर ये सिर्फ भेस बदलना नहीं था, ये एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग थी। एलिन सिर्फ श्वेत नहीं बल्कि एक अमीर पुरुष सज्जन के तौर पर दिखेंगी।
पुरुष क्यों?
क्योंकि इससे बेवजह का ध्यान उन पर नहीं जाता, और उन दिनों अकेले सफर करने वाली महिलाओं पर जो सामाजिक पाबंदियां थी उनसे भी वो बच जाती। चालाकी देखिए,
कमाल है।
और इस भेष को सच्चा दिखाने के लिए कई परतें थीं, जैसे बीमार होने का नाटक करना।
बहाना ये कि वो इलाज के लिए उत्तर जा रहे हैं, इससे लोगों की हमदर्दी मिलती और सवाल पूछने वाले भी कम हो जाते।
और फिर दाहिने हाथ को पट्टी में रखना, ये तो कमाल का आइडिया था।
हाँ,
क्यों?
ताकि उन्हें कहीं दस्तखत न करने पड़े, क्योंकि गुलामों को लिखना पढ़ना मना था, और एलिन भी लिख नहीं सकती थी। विलियम उनके सेवक के तौर पर सारे लेन देन संभालते, जो उस समाज में एक गुलाम के लिए सामान्य बात थी।
अरे वाह।
और चेहरे पर पट्टी और हरे रंग के चश्मे भी थे।
हाँ, वो इसलिए कि एलिन के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, जो एक पुरुष के लिए अजीब लगता। इसे छिपाने के लिए दांत दर्द का बहाना बनाया गया।
अच्छा।
और ऊपर से ऊंचा हैट और बढ़िया कपड़े, ये सब मिलकर मिस्टर जॉनसन की सत्ता और ऊंचे दर्जे वाली भूमिका को पुख्ता करते थे।
हर छोटी बात कितनी सोची समझी थी, अविश्वसनीय।
और सोचिए, इस सब के लिए कितना मानसिक साहस चाहिए था, खासकर एलिन के लिए। उन्हें अपनी पूरी पहचान, अपनी आवाज, अपने हाव भाव, सब सब दबाना पड़ा।
और विलियम की भूमिका भी कम मुश्किल नहीं थी।
बिल्कुल नहीं। बाहर से एक आज्ञाकारी गुलाम का नाटक करते हुए अंदर से वो इस योजना के साथी थे और अपनी पत्नी के रक्षक भी। दोनों एक बेहद खतरनाक नाटक के मंच पर अपनी अपनी भूमिकाएं जी रहे थे।
अब आता है किताब का वो हिस्सा जो सांसें रोक देता है, भाग 3, 1000 मील का जोखिम भरा सफर।
हाँ, असली थ्रिलर।
मैकॉन से फिलाडेल्फिया तक 4 दिन की यात्रा, हर मोड़ पर खतरा। ट्रेन में ही उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया जो विलियम को जॉर्जिया से जानता था।
ओह गॉड,
सोचे उस वक्त उनके दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन विलियम ने बड़ी होशियारी से वो गुलाम वाली भूमिका निभाते हुए स्थिति को संभाल लिया।
एक और मुश्किल पल तब आया जब टिकट एजेंट ने विलियम के सफर के लिए बॉन्ड मांगा। ये भगोड़े गुलामों को रोकने का एक तरीका था। वो लगभग पकड़े ही गए थे।
फिर क्या हुआ?
तभी मिस्टर जॉनसन यानी एलिन की बीमार और लाचार हालत देखकर एक साथी यात्री को दया आ गई और उसने उनकी जमानत दे दी।
इसे आप किस्मत कहें या उनकी एक्टिंग का कमाल?
दोनों शायद। स्टीमबोट पर तो स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। एलिन को यानी मिस्टर जॉनसन को कैप्टन की मेज पर दूसरे श्वेत यात्रियों के साथ खाना खाना पड़ा।
अरे बाप रे।
और उन यात्रियों में उनके मालिक का एक दोस्त भी शामिल था।
क्या, ये कैसे मुमकिन हुआ?
उन्हें बिल्कुल चुप और अलग थलग रहना पड़ा। उनकी बीमारी ही उनकी ढाल बनी रही। उस डर की कल्पना करना भी मुश्किल है।
उन्हें लगातार उस समाज के नियमों का सामना करना पड़ रहा था जिसकी वो नकल कर रहे थे।
हाँ, एलिन मिस्टर जॉनसन को लोग सिगार ब्रांडी ऑफर करते, पुरुषों के लिए बनी जगहों पर बुलाते, राजनीति पर उनकी राय पूछते, इन सबसे उन्हें बड़ी विनम्रता से बचना पड़ा।
और हद तो तब हो गई जब एक श्वेत महिला यात्री ने उनके वफादार गुलाम विलियम की तारीफ करते हुए उन्हें खरीद में ला प्रस्ताव दे डाला।
ओ, कितना अजीब और खतरनाक रहा होगा ये सब झेलना।
सफर का आखिरी हिस्सा बाल्टीमोर शहर से गुजरना सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो शहर गुलाम पकड़ने वालों का गढ़ माना जाता था। लेकिन आखिरकार क्रिसमस 1848 के दिन थके हारे लेकिन आजाद वो फिलाडेल्फिया पहुंचे। किताब में उस पल की राहत और अविश्वसनीयता को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है।
एक जीत तो हासिल हुई, लेकिन क्या ये असली आज़ादी थी? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 4 बताता है कि तथाकथित आज़ाद उत्तर में भी आज़ादी एक लगातार चलने वाला संघर्ष था।
अच्छा,
फिलाडेल्फिया और बाद में बोस्टन में गुलामी विरोधी आंदोलन यानी एबोलिशनिस्ट मूवमेंट के नेताओं जैसे विलियम लॉयड गैरिसन ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनकी कहानी गुलामी के खिलाफ लड़ाई का एक शक्तिशाली हथियार बन गई।
वो मशहूर हो गए होंगे फिर तो।
हाँ, उनकी कहानी अखबारों में छपने लगी, लेकिन यही शोहरत उनके लिए खतरा बन गई। 1850 में अमेरिका में भगोड़ा दास अधिनियम फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट पास हुआ।
ओह, वो कुख्यात कानून।
हाँ, एक बेहद खतरनाक कानून था जिसने उत्तर के राज्यों को भी गुलाम पकड़ने वालों के लिए खुला मैदान बना दिया। मतलब अब कहीं भी छिपना सुरक्षित नहीं था।
और देश भर में कहीं से भी भागे हुए गुलामों को पकड़कर वापस उनके मालिकों को सौंपा जा सकता था।
बिल्कुल, उनके पुराने मालिकों ने उन्हें वापस लाने के लिए बोस्टन में गुलाम पकड़ने वाले भेज दिए।
फिर
बोस्टन में जो हुआ वो बहुत नाटकीय था। बोस्टन सतर्कता समिति, जिसमें अश्वेत और श्वेत दोनों तरह के गुलामी विरोधी लोग शामिल थे, उन्होंने क्राफ्ट्स के चारों ओर एक इंसानी ढाल बना दी।
वाह!
उन्हें अलग अलग सुरक्षित घरों में छिपाया गया। उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियार दिए गए। विलियम ने ऐलान कर दिया कि वो जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे।
क्या बात है!
ये मामला इतना बढ़ा कि कानूनी और राजनीतिक लड़ाई अमेरिका के राष्ट्रपति फिलमोर तक पहुंच गई।
ये साफ हो गया कि अमेरिका की धरती पर उनके लिए सच्ची आजादी मुमकिन नहीं थी।
और इसीलिए किताब का आखिरी हिस्सा भाग 5 उनके निर्वासन, उनकी विरासत और फिर उनकी वापसी के बारे में है। पकड़े जाने के लगातार खतरे को देखते हुए क्राफ्ट्स को इंग्लैंड भागना पड़ा, जहां गुलामी खत्म हो चुकी थी। वहां उन्होंने करीब 20 साल गुजारे।
इंग्लैंड में वहां कैसा रहा?
इंग्लैंड में जाकर उन्होंने पहली बार सही मायने में आजादी और सुरक्षा महसूस की। उन्होंने वहां पढ़ना लिखना सीखा, वो हुनर जो अमेरिका में गुलामों के लिए मना था।
अच्छा, ये बहुत अहम बात है।
हाँ, उनके 5 बच्चे हुए जो आजाद नागरिक के तौर पर जन्मे। ये उनके जीवन का एक बिल्कुल नया, उम्मीदों भरा अध्याय था।
और फिर 1860 में उन्होंने मिलकर अपनी कहानी लिखी, रनिंग 1000 माइल्स फॉर फ्रीडम।
ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये अपनी कहानी पर अपना हक जताना था, अपनी पहचान को दुनिया के सामने रखना था, अपनी शर्तों पर।
और ये किताब दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी। इसने गुलामी के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और ताकत दी होगी।
बिल्कुल। फिर अमेरिका में गृह युद्ध, सिविल वॉर और गुलामी खत्म होने के बाद उन्होंने वापस अमेरिका लौटने का बड़ा और साहसी फैसला किया।
वापस अमेरिका, जॉर्जिया में।
हाँ, जॉर्जिया में अपने पुराने घर के पास ही वापस आए और वहां उन्होंने नए नए आजाद हुए लोगों के लिए एक सहकारी खेत और स्कूल शुरू किया।
ये तो कमाल है।
हालांकि उन्हें पैसों की तंगी और नवनिर्माण के दौर वाले दक्षिणी अमेरिका के हिंसक नस्लवाद का सामना करना पड़ा, लेकिन ये उनके जीवन भर के सपने के पूरा होने जैसा था।
उनकी विरासत सिर्फ भागने वालों की नहीं, बल्कि जिंदगी भर आजादी के लिए लड़ने वाले सेनानियों, शिक्षकों और समुदाय बनाने वालों की है।
बिल्कुल।
वाकई एक असाधारण जिंदगी, और उससे भी ज्यादा असाधारण उनकी कहानी।
इस पूरी दास्तान से कई गहरे सबक मिलते हैं ना?
हाँ, बहुत सारे।
पहला और शायद सबसे जरूरी सबक तो यही है कि प्यार भी क्रांति का एक रूप हो सकता है।
बिल्कुल।
क्राफ्ट्स का भागना, जैसा हमने पहले कहा, असल में एक प्रेम कहानी थी। उनका मकसद अपनी शादी और अपने परिवार को उस व्यवस्था से बचाना था जो अश्वेत परिवारों को तोड़ने के लिए ही बनी थी। उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण ही अपने आप में एक बड़ा विद्रोही काम था, क्योंकि गुलामी के कानून में उनके रिश्ते की, उनके प्यार की कोई जगह ही नहीं थी।
सही कहा। और दूसरा बड़ा सबक है पहचान के प्रदर्शन की ताकत।
हाँ, वो कमाल था।
एलन ने जिस कामयाबी से एक श्वेत अमीर बीमार आदमी का किरदार निभाया, उसने समाज की बनाई उन कैटेगरीज, नस्ल, लिंग, वर्ग के खोखलेपन को उजागर कर दिया।
बिल्कुल, जिनका इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए किया जाता था, उन्होंने जुल्म करने वालों के ही हथियारों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया।
और तीसरा, इंसान की हिम्मत और जज्बे की कहानी। गुलामी की बेरहमी के बावजूद क्राफ्ट्स की सूझबूझ, उनका आपसी भावनात्मक बंधन,
हाँ, और इंसाफ के लिए उनकी जिंदगी भर की कोशिशें, ये दिखाती हैं कि इंसान के अंदर की इंसानियत को कोई भी व्यवस्था पूरी तरह कुचल नहीं सकती।
उनकी कहानी उम्मीद जगाती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान रास्ता निकाल सकता है।
इसके साथ ही ये कहानी आजादी के भ्रम को भी तोड़ती है, नहीं?
हाँ, बिल्कुल। भगोड़ा दास अधिनियम ने ये साफ कर दिया कि उत्तर के राज्य और केंद्र सरकार भी गुलामी को बनाए रखने में कैसे शामिल थे।
बोस्टन में जो हुआ वो बताता है कि जिसे आजाद उत्तर कहा जाता था, वहां भी आजादी शर्तों पर आधारित और अनिश्चित थी, खासकर अश्वेत लोगों के लिए।
और आखिर में अपनी कहानी खुद कहने की ताकत,
ये बहुत जरूरी है। इंग्लैंड में पढ़ना लिखना सीखकर और अपनी किताब छापकर विलियम और एलिन ने अपनी कहानी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया।
ये उनकी आजादी का आखिरी लेकिन सबसे अहम कदम था। उन्होंने दुनिया को अपनी शर्तों पर बताया कि उनके साथ क्या हुआ और वो कौन है।
ये बात आज भी उतनी ही सच है ना? जैसे भारत में भी सामाजिक बराबरी की लड़ाई हो या कहीं और, अपनी आवाज उठाना, अपनी कहानी दुनिया को बताना, ये सशक्तिकरण का एक बहुत जरूरी जरिया है।
सही कहा। किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं, जैसे ये विचार कि उनकी ये योजना सिर्फ पहचान का एक प्रदर्शन नहीं थी, ये एक 4 दिन का ऐसा नाटक था जिसे सिर्फ सीमा पार करने के लिए नहीं बल्कि उस दुनिया के तर्क को ही खत्म करने के लिए रचा गया था जिसने उन्हें गुलाम बनाया था।
गहरा विचार है ये। ये दिखाता है कि उनका भागना सिर्फ जिस्मानी तौर पर भागना नहीं था बल्कि नस्ल और लिंग के आधार पर बनी सामाजिक सोच पर एक दिमागी हमला भी था।
और ये कि उनके विद्रोह की जड़ में क्या था, उनकी शादी जिसे कानून नहीं मानता था और जो हमेशा टूटने के खतरे में थी, उनके विद्रोह की असली ताकत बन गई। आज़ादी के लिए उनकी उड़ान सबसे बढ़कर एक दूसरे से प्यार करने के अपने अधिकार को बचाने की उड़ान थी।
हाँ, ये आज़ादी की लड़ाई को एक बहुत ही निजी और गहरे प्रेम के संघर्ष के तौर पर दिखाता है जो इसे और भी ज्यादा असरदार बनाता है।
उत्तर पहुंचकर उन्हें जिस सच्चाई का सामना करना पड़ा उसे शायद ऐसे समझा जा सकता है, उत्तर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि आज़ादी कोई जगह नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला संघर्ष था।
सही। भगोड़ा दास अधिनियम ने गुलामी की जंजीरों को पूरे देश में फैला दिया था, ये साबित करते हुए कि अमेरिकी धरती पर कोई सच्ची पनागाह नहीं थी।
ये उस आज़ाद उत्तर वाले मिथक को तोड़ता है और दिखाता है कि गुलामी की पकड़ कितनी मजबूत और राष्ट्रव्यापी थी।
और आखिर में अपनी कहानी लिखने का महत्व। अपनी कहानी लिखकर उन्होंने अपनी मुक्ति का आखिरी और सबसे स्थायी काम किया, उन लोगों से अपनी कहानी का हक छीन लेना जिन्होंने कभी उनके शरीर पर कब्जा किया था।
ये साक्षरता और अपनी आवाज पाने की ताकत पर जोर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इतिहास में आवाज उठाने से रोका गया।
अपनी कहानी कहना भी आजादी का एक रूप है।
हालांकि ये कहानी 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसके सबक आज भी बहुत काम के लगते हैं, नहीं?
निश्चित रूप से। पहला सबक तो है रचनात्मक प्रतिरोध की शक्ति। जब आप सीधे सीधे ताकतवर व्यवस्था से नहीं टकरा सकते तो उसकी ही कमजोरियों या नियमों का इस्तेमाल करके उसे मात देना।
ये आज के सामाजिक न्याय आंदोलनों या निजी जिंदगी की चुनौतियों के लिए भी एक प्रेरणा है।
हाँ, कि कैसे कम संसाधनों में भी बड़ा असर डाला जा सकता है अगर आप हटकर सोचें।
दूसरा, ये प्रणालीगत अन्याय सिस्टमिक इनजस्टिस को समझने में मदद करता है। कैसे कानून, संस्थाएं और समाज के तौर तरीके मिलकर नाइंसाफी को बनाए रख सकते हैं।
बिल्कुल, ये हमें आज के मुद्दों जैसे नस्लीय भेदभाव या दूसरी तरह की नाइंसाफियों को एक ऐतिहासिक नजरिए से देखने में मदद करता है कि ये समस्याएं नई नहीं हैं बल्कि ये गहरी जड़ें जमाए हुए व्यवस्था का हिस्सा हैं।
बॉस्टन सतर्कता समिति का उदाहरण वो सच्ची साझेदारी का एक जबरदस्त मॉडल पेश करता है।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ क्राफ्ट्स के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई बल्कि खुद खतरा मोल लिया और सक्रिय रूप से उनकी मदद की।
आज के दौर में सच्ची साझेदारी कैसे होनी चाहिए, ये उसका एक सबक है। ये सक्रिय होनी चाहिए, इसमें जोखिम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए
और ये हाशिए पर खड़े लोगों की जरूरतों पर आधारित होनी चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे के लिए।
सही। और अपनी पहचान और अपनी कहानी को वापस पाने का महत्व, अपनी शर्तों पर खुद को परिभाषित करना।
हाँ, आज सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ हमारी कहानियाँ आसानी से दूसरों द्वारा तोड़ मरोड़ दी जा सकती हैं, अपनी कहानी पर नियंत्रण रखना और अपनी आवाज़ उठाना शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
अंत में अनिश्चितता में साहस दिखाने का सबक। क्रॉफ्ट्स ने जब अपना सफ़र शुरू किया तो उन्हें कोई गारंटी नहीं थी कि वो कामयाब होंगे।
हर कदम पर मौत का खतरा था।
हाँ, ये डर के बावजूद कदम उठाने का सबक है जब आप किसी बड़े मकसद से जुड़े हों। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलाव अक्सर अनिश्चितता में हिम्मत दिखाने से ही आते हैं।
और उसकी बारीकी है, कैसे उन्होंने समाज के पूर्वाग्रहों, उसके नियमों को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, ये अविश्वसनीय लगता है।
हाँ,
ये दिखाता है कि प्रतिरोध कितने अलग अलग, कितने अप्रत्याशित रूप ले सकता है और सबसे ज्यादा दमनकारी व्यवस्थाओं में भी इंसान की रचनात्मकता और हिम्मत के लिए जगह होती है।
और मेरे लिए ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि नस्ल और लिंग जैसी श्रेणियां कितनी बनावटी और अस्थिर हो सकती हैं और अपनी कहानी को नियंत्रित करने की ताकत कितनी अहम है। क्रॉफ्ट्स ने सिर्फ अपनी आज़ादी हासिल नहीं की बल्कि उन्होंने अमेरिका की बुनियाद में मौजूद विरोधाभासों पर ही सवाल खड़े कर दिए।
बिल्कुल, उनका सफर सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये अमेरिकी पहचान और आज़ादी के मायने पर एक गहरा चिंतन था। ये वाकई एक जरूरी अमेरिकी महागाथा है जिसे जानना और समझना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।